नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन देने का फैसला किया। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए 23 सीमावर्ती जिलों में 393 चौकियां बनाई जाएंगी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत राज्य में अब तक 40 लाख से अधिक लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के वैश्विक प्रचार के उद्देश्य से आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में हो रहा है कई कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने नवरात्रि पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का फैसला किया है। महिला लाभार्थियों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण के संकल्प को और मजबूत करेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार प्रत्येक नए कनेक्शन पर 2000 से अधिक खर्च करेगी।
हमारी बहनों को 25 लाख अधिक उज्ज्वला कनेक्शन मिलेंगे। ये योजना 2016 में जिसकी शुरुआत हुई थी उसमें 10 करोड़ 30 लाख ऑलरेडी थे। अभी मिलके मुझे लगता है ये 10 करोड़ 60 लाख तक चले जाएंगे। अलग अलग वर्गों से डिमांड थी कि उज्ज्वला कनेक्शन बढ़ने चाहिए, तो मुझे बहुत ही खुशी है कि इस शुभ अवसर पर ये एडिशनल बेनिफिट हमारी बहनों को मिलेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए 23 सीमावर्ती जिलों में 393 चौकियां बनाई जाएंगी। अपर पुलिस महानिदेशक मद्य निषेध अमित कुमार जैन ने बताया कि इनमें से 50 सीमा चौकियां सीमा सुरक्षा बल की होंगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में भी 176 मिरर चेक पोस्ट बनाने का संबंधित राज्यों से अनुरोध किया गया है। इससे सीमा जांच चौकियों से पहले ही संदिग्धों की जांच सुनिश्चित हो सकेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बैंकों की नकदी ढोने वाले वाहनों में आउटसोर्स एजेंसी किसी तीसरे व्यक्ति या संस्था की राशि नहीं रखेंगे। ऐसा करने पर राशि जब्त कर ली जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने बताया कि इन वाहनों के साथ बैंक का दस्तावेज भी रखना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि आउटसोर्स एजेंसियों से वित्त मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया है। साथ ही इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में सीटों का बंटवारा जल्द हो जाएगा। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सम्मानजनक सीटों से उनकी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी।
मैं ये मानता हूं कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा।
जेपी गंगा पथ का भोजपुर के कोइलवर तक विस्तार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में नई परियोजना की आधारशिला रखी। विस्तारीकरण पर 6,595 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस पथ का निर्माण 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों के साथ लोग अब इन बदलावों का लाभ उठा सकते हैं। कल से लागू हुए नई कर संरचना के अंतर्गत जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय संरचना से 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में सरल बना दिया है। ये सुधार कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर को कम कर लोगों को राहत प्रदान करेंगे। एक रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करों में कटौती कर आम जनता को बड़ी राहत दी है। नए कर ढांचे में सरकार ने कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं मानव निर्मित धागों पर भी कर की दर को जो पहले 12% थी उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इस निर्णय से देश के कपड़ा क्षेत्र को सीधा लाभ होगा। वहीं घरेलू खिलौने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खिलौने और खेल वस्तुओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। यह निर्णय खिलौनों को अधिक किफायती बनाएगा और घरेलू तथा एमएसएमई खिलौना निर्माताओं को भी मजबूती प्रदान करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए एक खिलौना बनाने वाली कंपनी के सीईओ मोइज गाबाजी वाला ने इन जीएसटी सुधारों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह सुधार समाज के सभी वर्गों के लिए खिलौनों को और अधिक किफायती बनाएंगे। जीएसटी में हुई इस कटौती से आम लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ में बड़ी कमी आएगी। इन सुधारों से आम जनता, विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की बचत में इजाफा होगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म 12वीं फेल को और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार कटहल को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहन लाल को वर्ष 2023 के लिए बहुप्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित सरकार परिवर्तन और प्रगति की दिशा में लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर में आज हम चर्चा करेंगे कि मोदी सरकार ने किस तरह कल्याणकारी उपायों, सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र को मजबूत किया है। एक रिपोर्ट।
अगर आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता ना करें, मोदी आपकी गारंटी लेंगे। आश्वासन के ये शब्द प्रधानमंत्री ने पिछले साल पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहे थे।
जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेडी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है।
लगभग 45% सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP योगदान के साथ अनौपचारिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हितधारक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि योजना रेडी पटरी वाले दुकानदारों को कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करती है और इसमें डिजिटल भुगतान पर कैशबैक जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए जून 2020 में शुरू की गई इस योजना को अब 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लक्षित वितरण को सक्षम बनाता है। इस पोर्टल को अन्य सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है जो उपयुक्त रोजगार के अवसर, कौशल विकास के अवसर खोजने और सामाजिक सुरक्षा से लाभ प्राप्त करने में मदद करती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है जिसमें भारत सरकार 50% योगदान देती है और शेष योगदान श्रमिक द्वारा किया जाता है। मोदी सरकार की विभिन्न पहले ये सुनिश्चित कर रही है कि श्रमिकों को लाभ, ऋण और प्रशिक्षण प्राप्त हो जिससे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों को आर्थिक विकास और स्थिरता मिले। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
सेवा पर्व के दौरान प्रदेश में चलाए जा रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत राज्य में अब तक 40 लाख से अधिक लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि लोगों की स्वास्थ्य जांच के साथ साथ उन्हें दवा और परामर्श भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर हुई थी। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। इस अवसर पर देश और प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कार्यक्रम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA गोवा में मनाया जाएगा। समारोह का उद्घाटन केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव करेंगे। वहीं राजधानी पटना में क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान अनुसंधान परिषद में आयुर्वेद जन जन के लिए पृथ्वी के कल्याण के लिए विषय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न आयुर्वेद केंद्रों पर परामर्श शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह से ही लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। विभिन्न पूजा पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरा वातावरण माँ दुर्गा के मंत्रों और भजन से गुंजायमान है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की आज 117वीं जयंती है। आज ही के दिन 1908 में बेगूसराय के सिमरिया में उनका जन्म हुआ था। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुनते हैं 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर उनकी रचना परशुराम की प्रतीक्षा के अंश उन्हीं के स्वर में।
जो कविता सुना रहा हूँ वो परशुराम की प्रतीक्षा का एक छोटा सा अंश है।
कि पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो, जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा, देखोगे कैसा प्रलय चंड होता है, असीवंत हिंद कितना प्रचंड होता है।
पटना के खगोल रेलवे पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के आभूषण बरामद किए गए हैं। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के पलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य का गांजा बरामद कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। राजगीर में श्रीलंका के एक पर्यटक की कृद्धकुट पर्वत पर चढ़ाई के दौरान तबीयत खराब होने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कोलंबो निवासी 74 वर्षीय धनपाल के रूप में हुई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शिक्षक बहाली के चौथे चरण की रिक्तियां जल्द। दैनिक जागरण ने लिखा है, जेपी गंगापत का कोइलवर तक होगा विस्तार। प्रभात खबर लिखता है, 28 को पीएम मोदी और 27 को अमित शाह आ सकते हैं बिहार। कल सोनिया राहुल पटना में, 26 को प्रियंका आएंगी मोतिहारी। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, चुनावी वादों का सालाना भार 33,926 करोड़ रुपए। आज अखबार की सुर्खी है, अगले हफ्ते बिहार आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन देने का फैसला किया। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए 23 सीमावर्ती जिलों में 393 चौकियां बनाई जाएंगी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत राज्य में अब तक 40 लाख से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच की गयी। और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के वैश्विक प्रचार के उद्देश्य से आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में हो रहा है कई कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।